एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के पन्ने पलट रहे हैं जो अपने शांत प्रवाह में गहरे सवाल समेटे हुए है, मार्लिन रॉबिन्सन का पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यास गिलियर्ड।
हाँ, रॉबिन्सन तो समकालीन अमरीकी साहित्य की एक बहुत ही सम्मानित आवाज है। उनकी वो दार्शनिक गहराई और रोजमर्रा की चीजों में पवित्रता खोजने की क्षमता कमाल की है।
बिल्कुल, और गिलियर्ड जो 2004 में आया इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कहानी एक 76 साल के पादरी रेवरेंड जॉन एम्स के नजरिए से है,
जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में है और अपने छोटे बेटे के लिए एक लंबा खत लिख रहे हैं।
हाँ, तो आज की चर्चा में हम इसी खत के जरिए जो कहानी उभरती है, जो किरदार हैं, उनकी अंदरूनी यात्राएं हैं, और फिर वो कृपा, विरासत, क्षमा जैसे गहरे विषय, उन्हीं की परतें खोलने की कोशिश करेंगे।
और ये जानना भी जरूरी है कि कहानी का सेटअप क्या है। ये 1956 का आयोवा है, एक काल्पनिक छोटा सा शहर गिलियर्ड।
सही का, जहां वो अमेरिकी प्रोटेस्टेंट जीवन शैली और इतिहास के साए भी हैं, जैसे उन्मूलनवाद, नस्ली न्याय के मुद्दे, ये सब कहानी की पृष्ठभूमि बनाते हैं।
और इसी पृष्ठभूमि में है रेवरेंड जॉन एम्स, गिलियर्ड शहर के कॉन्ग्रीगेशनल चर्च के पादरी। मतलब प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की वो शाखा जहां लोकल चर्च को काफी आजादी होती है।
अच्छा,
तो 76 साल की उम्र में उन्हें पता लगता है कि उनका दिल कमजोर है।
हाँ।
और शायद वो अपने 7 साल के बेटे को बड़ा होते देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे।
ये एहसास तो किसी भी पिता को हिला देगा।
हाँ बिल्कुल, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता बन जाती है।
और इसी चिंता और कह सकते हैं प्रेम से जन्म लेता है ये पत्र।
ये सिर्फ यादें नहीं है, ये समय और मौत के फासले को पाटने की एक कोशिश है।
हाँ, वो अपने बेटे को सब कुछ सौंप देना चाहते हैं जो उनके पास है, अपनी समझ, अपने परिवार का इतिहास, अपनी आस्था, और सबसे बढ़कर अपना प्यार। ये एक तरह से उनकी आध्यात्मिक वसीयत है।
बिल्कुल, लेकिन कहानी सिर्फ एम्स की यादों और विचारों तक ही नहीं रहती। इसमें एक मोड़ आता है, एक नाटकीय मोड़, जब शहर में एक पुराना चेहरा लौटता है, जॉन एम्स बॉटन,
जिसे सब जैक कहकर पुकारते हैं।
हाँ जैक, और उसके लौटने से कहानी में एक अजीब सी बेचैनी घुल जाती है।
जैक कौन है?
जैक रेवरेंड एम्स के सबसे पुराने दोस्त रेवरेंड रॉबर्ट बॉटन का बेटा है, वही बेटा जिसे हमेशा से बिगड़ा हुआ, गैर जिम्मेदार माना गया।
अच्छा, और विडम्बना ये कि उसका नाम भी जॉन एम्स के नाम पर ही है।
बिल्कुल, तो उसके लौटने से सिर्फ शहर में ही बातें नहीं शुरू होती, रेवरेंड एम्स के अपने मन में भी हलचल मच जाती है।
पुरानी भावनाएं सतह पर आने लगती हैं, जैसे ईर्ष्या, शक।
हाँ, कुछ पुरानी नाराजगी भी, सालों से दबी हुई चीजें।
ये दिलचस्प है, मतलब जैक की वापसी सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं है, ये एम्स के लिए एक अंदरूनी चुनौती बन जाती है।
सही कहा, ये उनकी अपने विश्वास की, उनकी करुणा और क्षमा की, जो ईसाई शिक्षाएं हैं, उनकी सीधी परीक्षा है।
यही उपन्यास का वो केंद्रीय सवाल उभरता है कि जो व्यक्ति जीवन भर कृपा और क्षमा का उपदेश देता रहा, क्या वो असल जिंदगी में, खासकर जब उसके अपने डर और पूर्वाग्रह दांव पर हों, उस कृपा को जी सकता है।
ये सवाल सिर्फ एम्स के लिए नहीं, शायद हम सबके लिए है।
बिल्कुल,
उपन्यास की बनावट भी देखिए पारंपरिक नहीं है, चैप्टर्स में बटा हुआ नहीं है, ये एक लगातार बहते हुए चिंतन की तरह, एक ध्यान की तरह आगे बढ़ता है।
हाँ, शुरुआत होती है एम्स के पत्र लिखने के फैसले से, वो कहानी का ढांचा बन जाता है, हम उनके रोजमर्रा के जीवन में शामिल होते हैं, सुबह टहलना, उपदेश तैयार करना, अपनी पत्नी लीला और बेटे को देखना,
और साथ ही हर पल अपने घटते समय का एहसास,
वो भी लगातार बना रहता है।
और इसी दौरान एम्स अपने परिवार के इतिहास में भी गहरे उतरते हैं, वो अपने दादाजी को याद करते हैं।
हाँ, वो जोशीले उन्मूलनवादी थे, मतलब दास्ता के कट्टर विरोधी, और जो मानते थे कि अन्याय के खिलाफ हथियार उठाना भी जरूरी है।
और उन्होंने ब्लीडिंग कैंसर्स में हिस्सा भी लिया था, गृह युद्ध से पहले कैंसर्स में दास्ता को लेकर जो खूनी संघर्ष हुआ था।
और इसके ठीक उलट एम्स के पिता थे एक पक्के शांतिवादी।
ये विरोधाभास बहुत मायने रखता है, आस्था को जीने के दो अलग अलग तरीके, संघर्ष बनाम शांति।
हाँ, ये एम्स के अपने नैतिक संघर्षों को दिखाता है, और ये भी कि वो अपने बेटे को विरासत में क्या देना चाहते हैं।
सही, तो वर्तमान कहानी में तनाव तब बढ़ता है जब जैक बॉटन शहर में अपनी मौजूदगी दिखाने लगता है। वो चर्च आता है, अपने बीमार पिता से मिलता है,
लेकिन एम्स उसे शक की निगाह से देखते हैं।
बिल्कुल, उन्हें डर है कि कहीं जैक उनके परिवार के लिए कोई खतरा तो नहीं,
कहीं वो उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी और बेटे की जिंदगी में दखल देने तो नहीं आया।
ये डर कुछ हद तक तो पिता के प्यार से निकला है, पर कहीं ना कहीं ये एम्स के अपने पूर्वाग्रह भी दिखाता है।
और जैक भी उस स्थिति को और उलझा देता है ना।
हाँ, वो एम्स से धर्मशास्त्र पर अजीब से सवाल पूछता है, पूर्व नियति, पाप, मोक्ष जैसे गहरे मुद्दे।
एम्स को लगता है कि शायद जैक मजाक उड़ा रहा है या उनकी आस्था को चुनौती दे रहा है।
हाँ, और एक पल तो ऐसा आता है जब जैक एम्स के बेटे के बपतिस्मा पर ही सवाल उठा देता है।
वाओ, ये तो एम्स को बहुत व्यक्तिगत चोट जैसा लगा होगा।
बिल्कुल, तो ये अनिश्चितता बनी रहती है कि जैक क्या चाहता है, क्या वो सच में जवाब ढूंढ रहा है या सिर्फ एम्स को कुरेद रहा है। फिर आता है उपन्यास का सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन, और वो किसी धमाके के साथ नहीं आता, बल्कि एक देर रात की शांत बातचीत में खुलता है।
क्या पता चलता है?
जैक आखिरकार अपनी उदासी और अकेलेपन का राज खोलता है। उसने डेला नाम की एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला से प्रेम विवाह किया है।
ओ, 1950 के दशक के अमेरिका में?
हाँ, डेला मेम्फिस में एक सम्मानित स्कूल टीचर है और उनका एक बेटा भी है।
ये तो उस जमाने में ना सिर्फ सामाजिक रूप से अस्वीकार्य था, बल्कि कई राज्यों में गैर कानूनी भी था।
बिल्कुल, इसका मतलब था कि जैक, डेला और उनका बेटा एक साथ एक परिवार की तरह खुले तौर पर रह ही नहीं सकते थे।
तो अब जैक का गिलियर्ट लौटना एकदम अलग मायने ले लेता है।
हाँ, ये शायद ये देखने की एक हताश कोशिश थी कि क्या उसका परिवार वहाँ स्वीकार किया जा सकता है,
लेकिन उसे शहर के पूर्वाग्रहों का जल्दी ही अंदाजा हो जाता है।
बिल्कुल, जैक की वो तथागतित आवारागर्दी, अचानक एक त्रासद प्रेम कहानी और एक गहरे सामाजिक अन्याय की रोशनी में दिखने लगती है।
ये सच्चाई तो एम्स के नजरिए को पूरी तरह बदल देती होगी।
हाँ, उन्हें अचानक समझ आता है कि जैक की हरकतें शरारत या लापरवाही नहीं थी, वो गहरे प्यार और एक बेहद कठिन अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का नतीजा थी। वो जैक के दर्द को, उसकी लाचारी को महसूस कर पाते हैं।
उनका सालों का पूर्वाग्रह, वो संदेह, वो सब पिघल जाता होगा उस पल में।
हाँ, ऐसा महसूस होता है।
और फिर आता है उपन्यास का अंत, जो बहुत सादा है लेकिन बहुत मार्मिक।
एम्स बस स्टेशन पर जैक को देखते हैं, जो एक बार फिर गिलियत छोड़कर जा रहा है।
और एम्स क्या करते हैं?
अपने जीवन भर के संकोच, संदेह, शायद डर, उन सब पर काबू पाते हुए एम्स जैक के पास जाते हैं, उसके सिर पर अपना हाथ रखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं।
कोई लंबा भाषण नहीं, बस एक खामोश स्पर्श और चंद शब्द।
हाँ, लेकिन उसमें एम्स की पूरी जिंदगी की सीख सिमट आती है।
उस एक पल में रेवरेंड एम्स आखिरकार उस कृपा को जी लेते हैं जिसका उन्होंने जीवन भर सिर्फ उपदेश दिया था।
बिल्कुल, ये उनकी सबसे बड़ी और शायद आखिरी सीख थी जो उन्होंने मौत के इतने करीब आकर हासिल की।
लगता है जैसे अपने बेटे के लिए लिखा जा रहा पत्र तभी पूरा हुआ जब लिखने वाले ने खुद ये सबक सीख लिया।
हाँ, कह सकते हैं।
चलिए अब इन किरदारों की यात्राओं को थोड़ा और खोलते हैं। रेवरेंड जॉन एम्स हमारे कथावाचक, वे दयालु हैं, विद्वान हैं, आस्तिक हैं, पर परफेक्ट नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, उनमें मानवीय कमजोरियां हैं। वो थोड़े ईर्ष्यालु हो सकते हैं, दूसरों के बारे में राय बना लेते हैं, डरते भी हैं।
उनकी यात्रा अपने इन्हीं अंदरूनी संघर्षों से गुजरने की है।
हाँ, वो किताबी आस्था से आगे बढ़कर एक परखी हुई अनुभव से हासिल की गई गहरी कृपा तक पहुंचते हैं।
और जैक बॉटन कहानी का उत्प्रेरक।
हाँ, बाहर से देखने पर वो कस्बे का बिगड़ा हुआ लड़का है, शराबी, चोर, अविश्वसनीय, लेकिन रॉबिन्सन हमें उसके अंदर झांकने का मौका देती हैं।
जहाँ एक बुद्धिमान, संवेदनशील इंसान है जो शर्म और अकेलेपन के बोझ तले दबा है।
बिल्कुल, उसकी पूरी यात्रा माफी और अपनेपन की तलाश है, एक ऐसी जगह जहां उसे और उसके प्यार को स्वीकार किया जाए।
और उसका दुख सिर्फ उसकी निजी गलतियों का नतीजा नहीं है।
नहीं, वो उस सामाजिक अन्याय का भी परिणाम है जो उसे उसकी पत्नी और बच्चे से दूर रखता है। ये उसे बाइबल के उड़ाऊ पूत से कहीं ज्यादा जटिल और दुखद बना देता है।
हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितनी बार बाहरी दिखावे के आधार पर लोगों को गलत समझ लेते हैं।
बिल्कुल,
यही लीला एम्स, जॉन की युवा पत्नी का किरदार बहुत जरूरी हो जाता है।
उनका अतीत थोड़ा रहस्यमयी है, वे ज्यादा बोलती नहीं लेकिन उनकी नजर बहुत पैनी है। हाँ, उनके पास एक व्यवहारिक जमीनी समझ है जो अक्सर एम्स के धर्मशास्त्रीय विचारों को संतुलित करती है।
वो अपने पति और बेटे की ढाल जैसी हैं।
और कई मौकों पर एम्स के लिए नैतिक दिशा सूचक का काम करती हैं। उन्हें उनकी कठोरता से बाहर निकालकर करुणा की ओर ले जाती हैं।
और फिर हैं रेवरेंड रॉबर्ट बॉटन, एम्स के पुराने दोस्त।
हाँ, प्रेस्बिटेरियन पादरी, अब बूढ़े और कमजोर हो चले हैं और उनकी सबसे बड़ी फिक्र उनका बेटा जैक है।
वे बिना शर्त पिता के प्रेम का प्रतीक हैं।
बिल्कुल, अपने बेटे की तमाम गलतियों के बावजूद उसके लिए एक उम्मीद पाले हुए। एम्स के साथ उनकी दोस्ती गहरी है, लेकिन जैक को लेकर एम्स का अविश्वास इस दोस्ती में तनाव पैदा करता है। वे उस पिता की तरह हैं जो अपने खोए हुए बेटे की वापसी का इंतजार कर रहा है, चाहे इसमें कितना भी दुख क्यों ना हो।
इन किरदारों और उनके कहानियों से रॉबिन्सन कई गहरे विषय बुनती हैं। सबसे प्रमुख तो कृपा और क्षमा ही है।
हाँ, और उपन्यास ये नहीं पूछता कि कृपा क्या है, बल्कि यह दिखाता है कि कृपा को जीना कितना मुश्किल हो सकता है।
देखो, ये आसान चीज नहीं है।
नहीं, ये एक महंगा कठिन काम है जिसके लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों और अहंकार को छोड़ना पड़ता है। एम्स का जैक को दिया गया अंतिम आशीर्वाद इसी बिना शर्त वाली कृपा का प्रतीक है।
बिल्कुल, और ये कृपा तब और ज्यादा शक्तिशाली लगती है जब हम एम्स के पूरे आंतरिक संघर्ष को देखते हैं।
सही कहा, ये अचानक नहीं आती, लंबे आत्ममंथन के बाद उभरती है।
दूसरा अहम विषय है विरासत और पितृत्व। एम्स का पूरा पत्र ही एक विरासत रचने की कोशिश है।
हाँ, अपने बेटे को पहचान, इतिहास और आस्था सौंपने की। ये विषय दादा, क्रांतिकारी आस्था, पिता, शांतिवादी आस्था और खुद एम्स, चिंतनशील आस्था की तीन पीढ़ियों के जरिए सामने आता है।
और इसी के साथ जैक की अपने बेटे का पिता हमें की दुखद असमर्थता भी है,
जो सामाजिक अन्याय के कारण है। ये पितृत्व की पवित्र लेकिन कभी कभी बेहद दर्दनाक जिम्मेदारी को दिखाता है।
और जाहिर है, साधारण में पवित्रता की खोज ये तो रॉबिन्सन का ट्रेडमार्क है।
हाँ, वो रोजमर्रा की मामूली चीजों में छिपे गहरे सौंदर्य और दिव्यता को देखने में माहिर है।
एम्स खिड़की से आती रोशनी में, सुबह की हवा में, रोटी के स्वाद में,
या अपनी पत्नी और बेटे को लॉन के पानी के फवारे में खेलते देखकर एक अद्भुत पवित्र आनंद महसूस करते हैं।
उपन्यास जैसे कहता है कि सबसे गहरे आध्यात्मिक अनुभव चमत्कारों में नहीं बल्कि हमारे आसपास बिखरे जीवन पर ध्यान देने में है।
वो एम्स का वाक्य बहुत खूबसूरत है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे ईश्वर सृष्टि के इस गरीब भूरे अंगारे पर सांस लेता है और ये चमक उठता है, एक पल या एक साल या जीवन भर के लिए।
हाँ, ये पंक्तियां जैसे उपन्यास का सार हैं।
और ये नजरिया पाठक को भी दुनिया अलग ढंग से देखने के लिए प्रेरित करता है।
उपन्यास अमेरिकी इतिहास के बोझ को भी बड़ी खूबी से उठाता है।
बिल्कुल, दादा का उन्मूलनवाद संघर्ष और जैक की आज की दुर्दशा, अपनी अश्वेत पत्नी और बच्चे के साथ न रह पाना, ये दिखाते हैं कि इतिहास गुजरी हुई बात नहीं है,
वो आज भी जिंदा है और जिंदगियों को प्रभावित कर रहा है।
हाँ, नस्ली अन्याय का मुद्दा बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरे तरीके से बुना गया है।
अंततः उपन्यास मानवीय कमजोरी और आस्था की प्रकृति पर एक बहुत ही ईमानदार नजर डालता है।
एम्स अच्छे इंसान हैं लेकिन परिपूर्ण नहीं। वे शक करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, पूर्वाग्रह रखते हैं।
रॉबिन्सन जैसे कहती हैं कि सच्ची आस्था का मतलब गलतियों से परे होना नहीं है,
बल्कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, उनसे जूझना और लगातार करुणा की ओर बढ़ने की कोशिश करना है। ये संघर्ष ही आस्था को सच्चा और मानवीय बनाता है।
कथा शैली की बात करें तो ये पहले पुरुष में लिखा गया पत्र हमें सीधे एम्स के मन और हृदय तक ले जाता है।
हाँ, हम उनकी आवाज में कहानी सुनते हैं, लेकिन क्योंकि हम उनके पूर्वाग्रहों और डर से भी वाकिफ होते जाते हैं
तो वे एक तरह से अविश्वसनीय कथावाचक भी बन जाते हैं।
बिल्कुल, पाठक कई बार जैक की स्थिति को एम्स से पहले या उनसे बेहतर समझ लेता है, जिससे खास किस्म की नाटकी विडंबना पैदा होती है।
प्रतीक भी बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुए, पानी, प्रकाश।
हाँ, पानी बपतिस्मा, शुद्धि, कृपा का प्रतीक है, खासकर वो लॉन के फव्वारे वाला दृश्य। वो अप्रत्याशित आनंद और कृपा का क्षण है।
और प्रकाश, जो अक्सर रहस्योद्घाटन, सौंदर्य और ईश्वर की उपस्थिति का संकेत देता है।
बिल्कुल, और जैक की कहानी वो ओड़ाऊ पूत का रूपक तो है, लेकिन रॉबिन्सन उसे सामाजिक बाधाओं, नस्लवाद और कानूनों को दिखाकर कहीं ज्यादा जटिल और असली बना देती हैं।
और भाषा, भाषा तो जैसे किसी शांत प्रार्थना की तरह है।
हाँ, गीतात्मक और ध्यानमग्न, किंग जेम्स बाइबल की लय और उपदेशों का प्रभाव महसूस होता है।
वाक्य सरल हैं पर गहरे अर्थ वाले।
हाँ, ये शैली एक श्रद्धा और आत्मनिरीक्षण का माहौल रचती है जो उपन्यास के विषयों के साथ पूरी तरह मेल खाता है।
इस उपन्यास का भावनात्मक असर कैसा होता है पढ़ने वालों पे, क्या ये झकझोड़ता है या धीरे धीरे असर करता है?
मेरे ख्याल से ये शांत है पर गहरा असर छोड़ता है। ये पाठक को उस वृद्ध पिता और छोटे बेटे के रिश्ते की कोमलता और उदासी से जोड़ता है। ये हमें इन स्पेक्ट्रोमा की तरह अपने अंदर झांकने, अपने पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है।
पढ़ने के बाद वाकई दुनिया थोड़ी अलग नजर आने लगती है, रोजमर्रा के पल ज्यादा कीमती लगते हैं।
हाँ, और ये जीवन, विरासत, प्रेम और क्षमा के बारे में ऐसे सवाल छोड़ जाता है जो देर तक साथ रहते हैं।
ये दुनिया को देखने का एक धीमा, ज्यादा ध्यान से भरा और शायद ज्यादा दयालु तरीका सिखाता है।
तो कह सकते हैं कि गिलियर्ड हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्राएं शायद बाहरी दुनिया के शोर में नहीं, हाँ, और ये साधारण पलों में छिपी सुंदरता और कृपा को पहचानने का, और सबसे कठिन हालात में भी अपने भीतर और दूसरों के प्रति क्षमा की संभावना को थामे रखने का एक कोमल निमंत्रण है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।